आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। ज्योतिबा फुले ने जो विचार प्रकट किए थे, जो उन्होंने काम छेड़ा था, वो अभी भी अधूरा है। और ज्योतिबा फुले के अनुयायी और इस समाज को बेहतर दिशा में ले जाने के जिन्होंने संकल्प लिया है, वो निरंतर अपने खून पसीने से उस दिशा में बढ़ रहे हैं। उपलब्धियां बहुत हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है। 11 अप्रैल 1827 को वो पूना में पैदा हुए, ज्योतिबा फुले। 1890 तक वो निरंतर समाज सुधार का कार्य करते रहे। और ये वो जमाना था जब भारत नया बन रहा था, और नए बनते हुए भारत में ज्योतिबा फुले जैसे एक ऐसे विचारक की जरूरत महसूस हो रही थी भारतीय समाज को, जो अपनी ही जमीन से पैदा हुआ हो, जो अपनी ही जमीन में उगा हो, जिसके पास शोषित जनता के अनुभव हो और जिसके पास दूरगामी चेतना और दृष्टि हो, जिसके अंदर इतना साहस हो कि जो शोषक शक्तियां हैं उनका सीधे तौर पर मुकाबला कर सके, जिसकी वाणी में इतनी विश्वसनीयता हो कि लोग उस पर भरोसा कर सकें। ज्योतिबा फुले की चेतना में शोषित समाज के अनुभव शामिल थे, और फ्रांसीसी क्रांति की समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की जो चेतना कि भविष्य का भारत कैसा होगा, भविष्य का समाज कैसा होगा, कि किस समाज में सभी लोग सुखी रह सकते हैं, गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं, इज्जत के साथ रह सकते हैं। ज्योतिबा फुले की जिंदगी के जो अनुभव हैं वो हमें यही बताते हैं कि यदि हमें सभी के लिए समाज में जगह बनानी है, गरिमापूर्ण जगह बनानी है, तो हमें उन सब रूढ़ियों से, अंधविश्वासों से, उन सब गैर मानवीय शक्तियों से जूझना होगा, लड़ना होगा। उनको ध्वस्त किए बिना, उनमें सुधार किए बिना हम कोई नया समाज नहीं बना सकते। कुरड़ी पे कारपेट, यदि आप बदबू के ऊपर उसको ढक के उस पे मिठाइयां सजाओगे, तो वो मिठाइयां आप खा नहीं सकते, उनके अंदर बदबू हो जाएगी और वो मिठाइयां सड़ जाएंगी। इसलिए यदि हमें समाज बदलना है, तो उनकी बुराइयों को, उस बदबू को, उस सड़न को खोद खोद करके निकालना होगा। और वो सड़न, वो बदबू हमारे समाज के अंदर कहाँ से आती थी, इसका ज्योतिबा फुले ने विश्लेषण किया। कि ज्योतिबा फुले के बारे में बात करते हुए अक्सर दो बातों पे उनकी बात टिकती है कि वो एक समाज सुधारक थे और शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया। और उसमें भी जो शिक्षा का ढांचा, स्कूल खोले बस, इसके बाद बात खत्म हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा उसमें जोड़ दिया जाता है कि उन्होंने अछूत विद्यार्थियों के लिए, कन्याओं के लिए स्कूल खोले, लेकिन वो एक शिक्षा शास्त्री के तौर पे उनका शिक्षा से क्या, वो शिक्षा क्यों देना चाहते थे, शिक्षा से उनकी क्या अपेक्षाएं थी, शिक्षा का चरित्र क्या था, सरकारों से वो शिक्षा के बारे में क्या उम्मीदें करते थे, और शिक्षा को उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व क्यों प्रदान किया, ये सब बातें इस बात के नीचे दब के रह जाती हैं कि उन्होंने स्कूल शिक्षा की एक चेतना पैदा की। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। ये उक्ति या पंक्तियां हर जगह सुनने को मिलती हैं। ये पंक्तियां किसान का कोड़ा, जो उनकी किताब है, कि किसान पे किस तरह के चाबुक पड़ रहे हैं, किसान का शोषण किस तरह से, जितनी भी शोषणकारी शक्तियां हैं, चाहे धर्म के क्षेत्र से हो, चाहे वो महाजनी व्यवस्था हो, जमींदारी जागीरदारी व्यवस्था हो, या साम्राज्यवादी व्यवस्था हो, किस तरह से सारी शक्तियां मिलकर के लूट रही हैं किसान को, ये उसका यहां से शुरू होती है वो किताब विद्या बिना मति गई, जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारी मति यानी कि विजडम, जो विवेक है, वो विद्या से प्राप्त होता है, ज्ञान से प्राप्त होता है, सत्य से प्राप्त होता है। विद्या बिना मति गई, क्योंकि ये विद्या प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत बड़े समाज को बाकायदा नियम बना करके वंचित किया गया, और उससे उस समाज का विकास रुक गया। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, और जब ये विस्डम नहीं होती, बुद्धिमता नहीं होती, तो कोई योजना नहीं बना सकता आदमी, प्लानिंग नहीं कर सकता, वो खुद सोच नहीं सकता, अपने भविष्य का नक्शा नहीं बना सकता। और नीति बिना गति गई, और जिस समाज के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई नक्शा नहीं है भविष्य का, कोई सोच नहीं है, तो उसकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, उसमें कोई गति नहीं हो सकती, उसकी प्रगति संभव नहीं है। और जिसमें प्रोग्रेस नहीं है, उस बिना वित्त गया जो सारे संसाधन है, वो संसाधन किस तरह से हासिल कर सकता है, कि प्रोग्रेस नाम ही है संसाधनों का, संसाधनों के उत्पादन का और उसका सब में वितरण का। ये जिस तरह से ज्योतिबा फुले ने बाका एक तार्किक प्रणाली के साथ साथ समझाया हमें ये बात, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए, एक अज्ञानता ने इतने अनर्थ किए, इसलिए उन्होंने विद्या पे जोर दिया, ज्ञान पे जोर दिया। और एक बात मैं यहीं और एक और कह देना चाहता हूं कि जितनी भी भारतीय मेधा के अंदर, चिंतन परंपरा के अंदर, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, रविदास हो, गुरु नानक हो, या ज्योतिबा फुले हो, उन सब ने ज्ञान प्राप्ति पे, शिक्षा पे जोर दिया था, और आधुनिक हमारे चिंतकों ने, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने शिक्षा पे जोर क्यों दिया? क्यों? क्योंकि शिक्षा एक कुंजी है। शिक्षा से जीवन बदलता है। कैसे बदलता है? क्योंकि भारतीय समाज के अंदर या किसी भी समाज में जो हम काम करते हैं, जो हम काम धंधे करते हैं, जो हमारे उत्पादन के संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, उन संबंधों से ही हमारी जिंदगी चलती है, उसी से हम परिभाषित होते हैं। और शिक्षा ही है जो आधुनिक समाज में आप प्रोफेशन बदल सकते हैं, अपना पेशा बदल सकते हैं। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप उसी पेशे में खपेंगे जिसमें आपके बड़े बुजुर्ग और पीढ़ियां खपती आई हैं। इसलिए इन लोगों ने, इन हमारे महापुरुषों ने शिक्षा पे जोर दिया था। उस जमाने में बहुत सारे जितने भी समाज सुधारक थे, वो समाज बना रहे थे, कोई आर्य समाज बना रहे थे, कोई ब्रह्म समाज बना रहे थे, कोई प्रार्थना समाज बना रहे थे। तो एक महात्मा थे ज्योतिबा फुले, क्रांतिकारी, जो एक सत्य शोधक समाज बना रहे थे, सत्य का शोधन करने वाला। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनका झगड़ा अपने समय के असत्यों से हुआ है, अपने समय में फैलाए गए भ्रमों से हुआ है। आज भी हम उन असत्य और भ्रमों का शिकार किया जा रहा है, और इस देश के अंदर जिस तरह से जहर घोला जा रहा है झूठ के नाम पे, उस झूठ का पर्दाफाश करना, लोगों को सच्चाई की तरफ मोड़ना, ये आज एक सबसे बड़ा काम हो गया है। एक सत्य का बौद्धिक समाज हमें बनाने की जरूरत है, क्योंकि सत्य किसी को गिफ्ट में नहीं मिलता साथियों, कोई तोहफा नहीं है सत्य, उसको अर्जित करना पड़ता है, उसको प्राप्त करना पड़ता है। सत्य एक मूल्य है जिसको प्राप्त करने के लिए उस पूरे समाज से टकरा जाना पड़ता है जो सत्य को छुपाना चाहता है। हम हर रोज दैनिक जीवन में इस बात को महसूस कर रहे हैं, मनुष्यों के दिमाग कूड़ादान में तब्दील किए जा रहे हैं। कि उनकी जो दिमागों की क्षमता है विश्लेषण की, तथ्यों को पहचान करने की, उसको किस तरह से नष्ट किया जा रहा है। झूठ कहीं से भी आए, और उस जमाने में खास तौर पे झूठ की दुकान धर्मों का सहारा लेकर के चलती थी। आज भी वो परंपरा जारी है कि विवेकशील बनो, अंधविश्वास छोड़ो, वैज्ञानिक चेतना अपनाओ। जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज में जितने भी कमजोर तबके थे, विधवाओं के लिए, जो खुद से संभव हो सका वो चीजें की, और जो सरकारों से वो उम्मीद करते थे उसके लिए सरकारों को चेताया, ज्ञापन दिए, मेमोरेंडम दिए। बार बार वो कहते रहे अंग्रेजी सरकार को कि आप टैक्स तो लेते हो आम जनता से और उसको खर्च करते हो समाज के ऊपरी हिस्से पे। पैसा खर्च होता है या तो ब्यूरोक्रेसी पे, या तो समाज का जो ऊपरी तबका है जिसका इस देश के विकास में योगदान नगण्य है। एक बात मैं यही बताता चलूं, सावित्री बाई फुले, जो ज्योतिबा फुले के बाद 7 साल जी, 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। किस कारण से हुई थी? प्लेग फैला था 1897, याद रखिए, बंबई और पूना में। उनका लड़का यशवंत राव, जो उन्होंने गोद लिया था, वो डॉक्टर था, अपनी जमीन में हॉस्पिटल खोला। और जैसे आज आप कहानियां सुन रहे हैं, यदि किसी को संक्रमण हो गया है तो परिवार के लोग भी हाथ नहीं लगाते, ऐसे ही सावित्री बाई फुले शहीद हुई थी। उस बच्चे को उठा के लेकर आई थी जिसको उसके माँ बाप भी हाथ नहीं लगा रहे थे। कोरोना के बाद की दुनिया कुछ अलग होगी, उसमें सरकारों की, व्यवस्थाओं की प्राथमिकताएं बदलें, विकास का जो एजेंडा या विकास के जो तरीके अब तक हमारे सामने आए हैं उसके विकल्प मौजूद हों, कि वो जनपक्षीय किस तरह से बने। जो देश सिर्फ हथियारों का निर्माण करते रहे और जो ये इस पे फक्र करते रहे कि उन्होंने कितनी मारक क्षमता के हथियार बना लिए हैं, चाहे वो परमाणु बम हो, चाहे उनके जहाज हों, वो सब खाली खड़े हुए, वो किसी काम नहीं आ रहे। बीमारी से तो हम मुक्त होंगे, ये समय तो बीत जाएगा, लेकिन क्या भविष्य में भी उसी तरह की कहानियां, किस्से, उसी तरह के विकास के मॉडल, उसी तरह की चीजें चलती रहेंगी? ये एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या सत्ता का चरित्र भी जातिवादी होता है? बिल्कुल होता है। चाहे ज्ञान की सत्ता हो, चाहे धन की सत्ता हो, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, सत्ता के जितने भी रूप हैं, जहां जहां पर सत्ता है, चाहे धर्म में हो, उन सब सत्ताओं में जातिवाद उसका एक सबसे बड़ा भारत के अंदर एक हथियार रहा है। आखिर जाति का निर्माण हुआ ही क्यों था? यदि इस सवाल पे बात करेंगे तो हुआ ही इसलिए था क्योंकि जो साधन है उन पे कुछ लोग ऐश से अपनी जिंदगी बिता सकें और कुछ लोगों को उससे वंचित कर दिया जाए। जब एक ग्रंथ में, जिसको धार्मिक ग्रंथ के तौर पे या संहिता के तौर पे माना जाता है, जब उसमें यह लिखा गया, ये प्रावधान किया गया कि शूद्रों को किसी भी प्रकार की संपत्ति रखने का हक नहीं होगा, तो ये क्या चीज है? ये जातिवादी चरित्र है सत्ता का। तो इसलिए सत्ता को जाति से दूर करके हम नहीं समझ सकते। जाति एक कारक है, एक फैक्टर है सत्ता प्राप्त करने का और सत्ता में बने रहने का। ये भारतीय समाज का, भारतीय राजनीति का, भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय मीमांसा का, जाति को माइनस करके, अलग करके कोई विश्लेषण संभव नहीं है। आधुनिक समाज से पहले तक तो जाति ही एक ऐसा निर्धारक तत्व रही है जो हर चीज का फैसला उसके आधार पर होता रहा। जो ये अंजू कुमारी एक सवाल पूछ रही हैं, कर रही हैं कि ज्योतिबा फुले किस चीज से प्रेरित हुए थे कि इतनी कठिन परिस्थितियों में समाज के लिए लड़ते रहे, उनके प्रेरणा स्रोत भी बता दीजिए। ज्योतिबा फुले के जो प्रेरणा स्रोत हैं, वाशिंगटन की जीवनी और टॉमस पैन की जो किताब है राइट ऑफ मैन, वही वो पुस्तकें हैं जिन्होंने ज्योतिबा के अंदर एक समान समाज होने का, कि सब बराबर भी होना संभव है, कि सबको स्वतंत्रता भी हासिल हो सकती है। शिवाजी को भी उन्होंने इस तरह से ढालने की कोशिश की, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ज्योतिबा फुले को सिर्फ हम उन्होंने कुछ स्कूल बनाए थे, शिक्षा में योगदान दिया था, इसको कहकर के छोड़ देते हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले ने अपने नायक बनाने की कोशिश की। शिवाजी के ऊपर उन्होंने एक पूरी किताब लिखी, पूरा पवाड़ा, वो काव्य में लिखा, कविता है उनकी, एक लंबी कविता है, छत्रपति महाराज का पवाड़ा। उन्होंने पौराणिक चरित्रों को निकालने की कोशिश की, बलि राजा, आजकल आप एक बहस सुन रहे होंगे जो सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर एक बार बहुत तेजी से उठी थी और बाद में वो दब गई है, अब महिषासुर मर्दिनी वाली बहस जो थी, बलि राजा। बलि राजा को एक अपना पौराणिक पुरुष मानना, ये बलि राजा कौन था जो धरती के नीचे जिसको समाना पड़ा, चाहे वो कहानी ही है, जिसके पास कहानी है उसी के पास शासन है। कहानियों का महत्व ये होता है, और मॉडर्न समाज के अंदर पहले एक नैरेटिव बनाया जाता है, एक कहानी बनाई जाती है, और फिर वो कहानी खुद एक कहानी को निर्मित करती है, फिर वो कहानी एक इतिहास बनाती है। ज्योतिबा फुले ने इस तरह से अपने इतिहास को, अपने मिथकों को पुनर्रचना करने की कोशिश की, उनको इस तरह से व्याख्यायित करने की कोशिश की। उनके ये जो पहलू हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में, एक सांस्कृतिक अध्येता के तौर पे जो उन्होंने काम किया, उनको लगभग भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने, भारतीय क्रांतिकारी शक्तियों ने उसको भुला रखा है, उसको देखने की जरूरत है। ज्योतिबा फुले सिर्फ एक ओबीसी आइकन नहीं है, वो भारत के ऑर्गेनिक पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, जन बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने पहली बार यहीं के अनुभव से, यहाँ की जो संरचना है समाज की, सत्ता की, उसमें जो शोषण की परतें हैं, उसमें जो शोषण के अलग अलग स्तरों के ऊपर जो दिखाई देने वाली चीजें हैं, उनको व्याख्यायित किया था, विश्लेषण किया था, उस पर उंगली रखी थी, उसको समझने की जरूरत है। सतीश वर्मा जी हैं जो पूछ रहे हैं क्या हमारा समाज जातिवाद से ऊपर उठ सकता है, बिल्कुल उठ सकता है, क्यों नहीं उठ सकता? आखिर जातिवाद क्या है? जातिवाद है संसाधनों पे कब्जा जमाए रखने की एक ऐसी स्कीम, कि जिससे जो जिस व्यक्ति का उस पे हक है वो स्वतः ही उसको छोड़ देता, जाति के माध्यम से उसको इस तरह से डिमोरलाइज किया जाता है, वो खुद ही अपनी जो आत्म छवि है वो ऐसा सोचने लगता है। और आपने अपनी जिंदगी में ही देखा होगा कि किस तरह से जाति के रूप बदल रहे हैं। देखिए, रामफल देवरा जी हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत क्रांतिकारी हैं, और खुद जो है समाज में बदलाव का जो संघर्ष है उसमें शामिल हैं, कि ज्योतिबा फुले के संघर्ष को आधार बनाकर लड़ाई को कैसे आगे ले जा सकते हैं। जो ज्योतिबा फुले का संघर्ष है, जो उनकी चेतना है, शोषितों को लामबंद करना, उनको जागरूक करना, उनके अंदर से मिथ्या चेतना निकालना, भय निकालना, लड़ने का साहस पैदा करना, ये ज्योतिबा फुले का ही संघर्ष है। व्यक्ति पुराने हो जाते हैं, व्यक्तियों का समय होता है, लेकिन उनकी सोच का, उनकी चेतना का कोई समय नहीं होता है। ज्योतिबा फुले का संघर्ष अभी जारी है। ये हमारे दोस्त हैं अशोक चौहान, वर्ग संघर्ष यह काम करेगा, वर्ग चेतना जन्म ले रही है, क्रांति काल निकट है। देखिए, आपके मुंह में घी शक्कर दोस्त, यदि क्रांति का समय निकट है, क्योंकि मेरा मानना है क्रांति तो निरंतर हो रही है, और वो इसीलिए निकट है क्योंकि वो निरंतर हो रही है। देखिए, किसी जमाने के अंदर एक पहली बार एक फिल्म में गाना आया, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमलदा। जिस औरत को अभी घर से बाहर निकलने के लिए जगह नहीं थी, वो दुपट्टा लहरा के चल रही। जिस औरत को अभी दहलीज से बाहर नहीं निकले दिया जा रहा था, अब वो कहाँ जा रही? तो ये सब क्रांति के बीज हैं, क्रांति के सूत्र हैं। क्रांति कोई, जैसे रेणु ने लिखा था मैलांचल उपन्यास में, कोई परी नहीं है कि आकाश से उतरेगी, कि एक दिन लाल सवेरा होगा। क्रांति हर रोज हो रही है, आप उसको चिन्हित करिए, आप उसको देखिए, आपके पड़ोस में क्रांति घटित हो गई है। मैं अपने सामने क्रांति घटित होते हुए देख रहा हूं, निरंतर क्रांति क्रांति की एक दिशा है। वर्ग संघर्ष कोई तलवारों और लाठियों में नहीं होता, वो भी होगा किसी दिन यदि होगा तो। वर्ग संघर्ष सबसे पहले दिमाग में होता है। कि आप दुनिया की क्रांतियों को देखेंगे पढ़ेंगे, यदि लोग क्रांति के लिए तैयार नहीं है, वर्गीय चेतना उनमें नहीं आ रही है, तो कोई क्रांति संभव नहीं होगी। और वर्गीय चेतना क्या होती है? कि अपनी वर्ग की स्थितियों को पहचानना, अपने भले बुरे के बारे में सोचना, ये सब वर्गीय स्थितियां। और जब ये चेतना कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर छोटे छोटी जो समस्याएं हैं उन पे हाथ फैलाने की बजाय जब सारी समस्याओं का समाधान निकालने की लोग सोचने लगे सामूहिक रूप से, वो तो क्रांति में तब्दील हो जाया करती है चीजें। क्रांति का जो एक क्लासिकल स्वरूप है कि एक क्रांति होगी, एक सेना बनेगी और वो शासन सत्ताओं को उखाड़ के फेंक देगी, शायद उस रूप में ना घटित हो, उसका रूप कोई भी हो, क्रांति का मतलब ही है आमूल बदलाव। कि जिस वर्ग का संसाधनों के ऊपर वर्चस्व है और जो जो लोग, जो समुदाय, जो वर्ग जिनकी मेहनत से दुनिया चल रही है, यदि उनमें उस मेहनत का वितरण नहीं होता तो क्रांति अवश्यंभावी है। जब तक अन्याय रहेगा दुनिया में क्रांति की संभावना है और कोई शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, ये ज्योतिबा फूले का संघर्ष है। अन्याय जहां भी है उसको चिन्हित करना और उसकी मुखालफत करना निडर होकर के, असत्य जहां भी है उसको चिन्हित करना और सच्चाई को प्रकट करना, ये ज्योतिबा फूले का काम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ज्योतिबा फुले जयंती के ऊपर इस विचार विमर्श में शामिल हुए। हमने उस महान पुरुष को याद किया, उनके विचारों को याद किया, और जितना हमारे से संभव होगा हम ये संकल्प लें कि मानवता के भलाई के लिए, समाज के बेहतरी के लिए उसमें हम अपना योगदान करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।